ओम शांति। तो अभी आज का हमारा सत्र, हमारे जो भी स्पार्क विंग के प्रोजेक्ट बने हुए हैं उन प्रोजेक्ट्स का रिपोर्टिंग जो साल भर में सभी ने पुरुषार्थ किया उसके बारे में है। तो अभी सबसे पहला प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारे बीच में प्रेजेंट करेंगे मेघा दीदी। मेघा दीदी आप कल्याण से हैं। मेघा दीदी का थोड़ा परिचय देते हैं हम। मेघा दीदी बाल्यकाल से अर्थात 1982 से बाबा के ज्ञान में आ गए, 98 से बाबा की सेवाओं में समर्पित हुए। हमारी दीदी एमएससी बीएड करके कुछ समय जॉब भी किए और उसके बाद ईश्वरीय सेवाओं में 98 से समर्पित हुए। बहुत सारे कल्याण और संबंधित सेवा केंद्र जितने भी हैं वहाँ पर, वहाँ पे कॉरपोरेशन सेक्टर, स्कूल, कॉलेज, रेलवे ड्राइविंग स्कूल्स, ऐसे बहुत जगहों पर आप अपनी सेवाएं देते रहते हैं। अनेक आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान देकर ईश्वर का बनाना और उनकी जीवन का परिवर्तन करना, ये सदैव आपके जीवन का लक्ष्य रहता है। दीदी जी हमेशा जो भी काम करते हैं वो बहुत परफेक्ट लेवल तक जाकर करते हैं। तो अभी हम मेघा दीदी से सुनेंगे।
ओम शांति। आज हम जो हमारा प्रोजेक्ट है वर्तमान पल बने यादगार कल, इसकी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। तो ये प्रोजेक्ट एक्चुअली पिछले साल भी हमने किया था और वो बहुत अच्छी रीति से हुआ था, इसलिए सभी का ये सोच था कि इसकी और गहराई में हम जाएंगे और इस साल भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले साल का ही था जिसमें पिछले साल सभी ने अपने ब्राह्मण जीवन की जो भी यात्रा है सफलतापूर्वक हमने की है, जो भी यादगार पल है, जैसे हम पहले जहां हमने कोर्स किया है, पहला हमारा बाप दादा मिलन जो है, या विशेष सेवाएं अगर हमको कोई चांस मिला है तो उसका विशेष एल्बम के रूप में बहुत सारे भाई बहनों ने तैयार किया है, तो वो किया था। और इस साल जो प्रोजेक्ट में हमने टॉपिक्स लिए हैं, तो सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट के जो गाइड है आदरणीय अलका दीदी जी कल्याण सेंटर से हैं, जिन्होंने बहुत समय से हमको इस कार्य के लिए गाइड कर रहे हैं और विशेष इस साल इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए उनका बहुत अमूल्य मार्गदर्शन रहा है। और साथ ही साथ पूना से मुकुल भाई जी है जो हमको समय प्रति समय इस प्रोजेक्ट के लिए गाइड करते रहते हैं। तो इस साल हमने इस प्रोजेक्ट को विशेष 5 भागों में डिवाइड किया है। यहाँ 4 ही भाग बताए हैं लेकिन 5वां भी टॉपिक लिया गया है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है यादगार से वर्तमान और वर्तमान से यादगार, दूसरा था संबंधों में मधुरता, तीसरा जरा हटके जरा बचके, चौथा भविष्य की स्मृति वर्तमान में अनुभूति, और 5वां है अब घर जाना है। क्योंकि पिछले साल पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो विशेष सभी ने इस पार्क में ये भट्टी की थी अब घर जाना है, तो ऐसे समय भी हमें इशारा कर रहा है कि घर के लिए हमें अपनी विशेष तैयारी करनी है। तो जो फर्स्ट टॉपिक है यादगार से वर्तमान और वर्तमान से यादगार, इसके कोऑर्डिनेटर रहे हैं राकेश भाई जी पूना सेंटर से। उन्होंने रोज सभी भाई बहनों को, जो भी भाई बहने इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए थे, लगभग 1000 भाई बहनों को रोज मैसेज जाता था टेलीग्राम के द्वारा, 368 भाई बहने थे और 3 व्हाट्सएप ग्रुप थे जिसमें लगभग 750 भाई बहने थे। तो 1000 भाई बहनों को रोज व्हाट्सएप के थ्रू या जो भी सोशल मीडिया के द्वारा मैसेज जाते थे तो वो इस प्रकार से भेजते थे। फर्स्ट टॉपिक की जो शुरुआत हुई थी वो हमने 15 अप्रैल से 30 जून तक इस प्रोजेक्ट को लिया था, इस सब टॉपिक को, जिसमें संगम युग के यादगार, जो खास बाबा हमको कहते हैं कि हमेशा अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने रखना है ताकि हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति से हो। यादगार से वर्तमान और वर्तमान से यादगार, इसमें फर्स्ट भाग में जो फर्स्ट पार्ट में है कि हमारे ब्राह्मण जीवन में हमारे जीवन की जो विशेष पुरुषार्थ की उन्नति की बातें हैं वो हमको याद करना है, साथ ही साथ यज्ञ में जो यादगार बने हैं, मम्मा बाबा ने विशेष जो पुरुषार्थ किया है उसको भी हमें फॉलो करना है, क्योंकि बाबा ने इसी लक्ष्य से जो कार्य किया है कि मैं जो करूंगा मुझे बच्चे सभी फॉलो करने वाले हैं। तो बाबा का हर कर्म जो था वो इसी दृष्टि से रहा है। और यज्ञ में जो भी हमारे बड़े हैं, दादियां हैं, उन्होंने भी इस बात को सामने रखते हुए हर कार्य और सेवाएं की है। तो उसको हमें, भले वो होकर गया है लेकिन वर्तमान में हमें उसको अपने जीवन में धारण करना है, ताकि जैसे वो कर्मातीत स्थिति को पाए तो उसकी तरफ हम भी आगे बढ़े। तो ये कुछ बातें हैं। जैसे मधुबन में जो यादगार है, गौमुख का यादगार है, तो ये सारे हम सभी बच्चों के हैं, तो इसके लिए हमको इस पर ध्यान देना है। जैसे दलवाड़ा मंदिर है या अचलगढ़ है, ये हमारे विशेष स्थिति के जो यादगार हैं, इसको एक एक दिन के लिए खास अभ्यास कराया गया कि ये यादगार हमारा ही है और कैसे बना है। तो ये चित्रों सहित सभी के पास जाता था। फिर जो हमारी दिनचर्या है वो पूरी लिख करके सभी के पास जाती थी, और उसमें विशेष अमृत वेले के लिए हमने अलग अलग स्थान चुने थे। जैसे पहले हफ्ते में हमने मधुबन के जो भी यादगार है तो सभी को ये बताया गया था कि आज के दिन पहले दिन हमें बाबा के कमरे में सभी को अपने आप को अनुभव करना है। पांडव भवन में जो बाबा का कमरा है वहाँ हम सभी बैठ करके योग करेंगे, क्योंकि वो समय तो लॉकडाउन का था, तो हमें बुद्धि के द्वारा सभी को अपने आप को वहाँ अनुभव करना है। फिर दूसरे दिन था कि हिस्ट्री हॉल की विशेषताओं को, जो बाबा हमेशा मुरली में सुनाते हैं, तो हिस्ट्री हॉल में बाबा बैठे हैं और हम सभी बच्चे योग कर रहे हैं। फिर बाबा की कुटिया में और ऐसे अलग अलग स्थान जो शांतिवन के भी है, तपस्या धाम आदि है, तो ऐसे रोज एक चित्र, बाबा का वो कमरा, देश विदेश के सभी सेंटर्स, तो पूरे 2.5 महीने अलग अलग बाबा के कमरों में हमको यात्रा कराई। तो इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, राकेश भाई ने, और सभी विदेश के सेंटर्स के भी बाबा के जो कमरे हैं उसके विशेष चित्र सभी के पास भेजे हैं, तो वो भी आप सभी देख सकते हैं। और वहां सभी ने अच्छे से योग किया है, अपने आप को अनुभव किया है। फिर उसके बाद था कि अमृत वेले के बाद हमें उसमें अमृत वेले की विशेषताएं जो बाबा ने बताई है बुक में, वो विशेषताएं भी रोज 4-5 पॉइंट्स लिखकर भेजते थे। फिर उसके बाद है कि स्वमान का चिंतन हमको करना है और उसको लिखना भी है। चिंतन हम करते हैं लेकिन जब हम लिखते हैं तो वो विशेष स्मृति में रहता है। फिर हमें मुरली सुनना है, तो उसके लिए विशेष आत्मिक स्थिति का अभ्यास, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के हमको मुरली सुनना है। तो ऐसी हमारी जो ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या है, लेकिन इसको रोज हमको चार्ट के रूप में लिखनी भी थी और विशेष यादगार बने, हमारा ही ये जो प्रोजेक्ट है या 2 महीने का जो समय है वो विशेष यादगार बने, उसी आधार पर ये पॉइंट्स भेजे गए थे। फिर ये एक विशेष बहुत अच्छा अभ्यास रहा है, एक संकल्प में टिकने का प्रयोग, तो ये सभी को बहुत अच्छा लगा। और खास पूना के ग्रुप के जो भाई बहने हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, और आज तक भी ये प्रोजेक्ट का जो सब टॉपिक था ये 2 महीने के लिए ही था, लेकिन ये सबको बहुत अच्छा अभ्यास लगा। इसमें खास सभी भाई बहने जूम के द्वारा रोज सुबह 10:30 बजे 15 मिनट के लिए जुड़ते हैं, और इस विषय पर जो भी टॉपिक मुरली से एक पॉइंट रहती है उसके ऊपर या तो चिंतन करते हैं या कुछ छोटी सी संकल्प दिया जाता है, या म्यूजिक के द्वारा साइलेंस में रह करके 15 मिनट के लिए उस विषय की गहराई में जाते हैं। शाम को 5:30 बजे भी होता है, तो आपको अगर चाहिए उसकी जूम लिंक तो आप ले सकते हैं। और ये रोज अभ्यास सभी संगठित रूप में करते हैं, एक संकल्प में टिकने का अभ्यास। फिर भोजन बनाने की जो सेवा है, तो ये सभी हमारे ब्राह्मण जीवन के लिए याद से यादगार कैसे बने हैं, क्योंकि जैसा कर्म हम अभी करते हैं तो भविष्य में भी जो विधि विधान बने हैं या गायन पूजन जो होता है वो हमारे वर्तमान के कर्मों अनुसार होता है, इसलिए ये सब कुछ हमको विशेष अटेंशन रखना है। तो ऐसे रोज अलग अलग चित्रों के द्वारा सभी के पास ये भेजा जाता था। फिर शाम को भी 4 से 6 के बीच में 15 मिनट हमें मुरली की एक पॉइंट पर मनन चिंतन करना है। तो इसके लिए भी आजकल 5:30 बजे जूम लिंक से सभी 15 मिनट के लिए ज्वाइन होते हैं। फिर नुमा शाम का योग, इसमें भी अलग अलग चित्र भेजे थे, जैसे यहाँ है बाबा की पहाड़ी पर जैसे बाबा सभी को योग कराते हैं, तो ऐसे चित्र भेजे थे। फिर सोने से पहले बाप दादा से 30 मिनट तक रूरियान करनी है और लास्ट में बाबा को ओके का चार्ट देना था, क्योंकि बाबा हमेशा कहते बहुत लंबा चौड़ा चार्ट नहीं चाहिए, तो ओके का चार्ट भेजना है, और अगर ओके नहीं है तो उसको ओके करके फिर ही सोना है। तो यह है, इसलिए 30 मिनट का रूहरियान का समय दिया गया था। फिर आप सभी को तो पता है कि स्पार्क विंग के द्वारा हम सभी को उन दिनों विशेष हम सभी ने योग किया था अप्रैल में जून के समय में, तो वो भी योग सभी ने बहुत अच्छी रीति से किया, सभी को बहुत अच्छा लगा। जो मनसा सेवा हम उस समय कर रहे थे 9:15 से 10:15 बजे तक पहले आता था आधे घंटे का, फिर 45 मिनट्स का था, तो उसके लिए भी खास सभी का बहुत अटेंशन रहा है। और हर संडे जो भट्टी होती थी 8 घंटे की, तो वो भी सभी ने बहुत अच्छी रीति से अटेंड की। तो ये जो समय था इसमें सभी ने बहुत अच्छे से पुरुषार्थ किया। और इसमें खास जो है जून का मास था, तो जून के महीने में मम्मा के विषय में मम्मा का जो बुक बना है, तो उन विशेषताओं के वीडियोस हमने बनाए थे और रोज एक विशेषता का वीडियो हरेक के पास भेजते थे, साथ साथ कुछ कमेंट्रीज भी हमने रिकॉर्ड करके भेजी थी। तो ये वीडियोस भी बहुत अच्छे हैं, अगर आपको चाहिए मम्मा का जो बुक है उसी में से मम्मा की जो विशेषताएं हैं, जैसे हमेशा हाजी का पाठ या मम्मा के प्रति भी बाबा का कैसे रिगार्ड था, तो वो सब बातें उस ऑडियो के द्वारा और उसमें मम्मा के अलग अलग चित्र रख करके बहुत अच्छे वीडियोस हमने बनाए थे। तो जून मास में विशेष वो अभ्यास भी सभी के पास जाता था। साथ साथ जो मुरली के गीत हैं और बाप दादा की जो ड्रिल्स है, जो स्वमान उस समय अगर चल रहे हैं, क्योंकि रोज अलग अलग स्वमान दिए जाते थे चिंतन के लिए, तो उसके आधार पर अगर कोई ड्रिल बाप दादा ने कराई है तो वो ड्रिल्स भी हम सभी के पास भेजते थे। तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा, यादगार से वर्तमान और वर्तमान से यादगार, क्योंकि अभी हम जो करेंगे इसका भी बहुत महत्व है, भविष्य के लिए यही हमारा आधार है। तो इसलिए अभी जो समय हमारे पास है उस पर हमको ज्यादा फोकस करना है। तो ये टॉपिक रहा। फिर सेकेंड जो था जुलाई और अगस्त महीने में, वो था संबंधों में मधुरता, तो उसकी पूरी रिपोर्ट की एक वीडियो बनी हुई है, वो हम इसके बाद आपको दिखाएंगे। फिर ये हमारा थर्ड टॉपिक जो अभी चल रहा है सितंबर और अक्टूबर महीने में, तो वो है, उसका टॉपिक का नाम ही सभी को जरा अलग लगता है, उसका नाम है जरा हटके जरा बचके, और इसके कोऑर्डिनेटर है मुकुल भाई जी। तो इस टॉपिक के लिए ये 2 महीने चलाना है, इसमें विशेष 5 बातों पर अटेंशन दिया गया है। तो फर्स्ट है खुशी चैलेंज, और जो चार्ट हम रोज भेजते थे वो खास राजीव भाई जी ने अपनी टीम के द्वारा रोज तैयार किए हुए हैं, और उन्होंने बहुत मेहनत की है, गूगल फॉर्म जैसे होता है तो चार्ट रोज उनको हमको सबमिट करना होता है, और महीने के बाद फिर उसका एनालिसिस करते हैं कितने भाई बहनों ने चार्ट भरा है। और चार्ट में भी बहुत सारे पॉइंट्स नहीं है, सिर्फ 4 पॉइंट्स ही दिए जाते हैं, उसमें से एक पॉइंट रोज चेंज होता है या कोई पॉइंट एक हफ्ते तक भी अभ्यास करना होता है। जैसे अभी जो चार्ट चल रहा है उसमें से एक पॉइंट है कि हमारी आज की खुशी का कितनी परसेंटेज रही, तो उसमें मार्क्स दिए हुए हैं। तो ये जो टॉपिक है जरा हटके जरा बचके, इसमें सबसे पहला है खुशी चैलेंज। खुशी चैलेंज यानी सारा दिन भर हम कितना खुश रह सकते हैं, तो छोटी छोटी बातों में हमें खुशी ढूंढनी है, लेकिन वो सात्विक खुशी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हमने कुछ कर लिया हम तो खुश हो गए लेकिन दूसरों का हमें पता नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन हम अपने आप के लिए ही ऐसी कोई बातें ढूंढे या कुछ टिप्स निकाले कि हम खुश रह सके, सदा प्रसन्न रह सके। बाबा भी हमेशा कहते हैं कि खुशी ये आपकी स्थिति का थर्मामीटर है, आपकी स्थिति कैसी है, ये आपकी खुशी जाहिर करती है। तो इसलिए अभी हम जो चार्ट रख रहे हैं उसमें ये एक विशेष पॉइंट है कि आज हम कितना खुश रहे, उसमें रेटिंग दी हुई है। फिर ये अभी बाकी है, सूत मूंजा हुआ है, ये टॉपिक अभी लिया नहीं है। फिर तीसरा है रोना बंद हंसना शुरू। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि हमें ऐसी लिस्ट निकालनी है जिसमें हमको बहुत सारी कंप्लेंट्स है कि ये मुझे नहीं मिला है, मुझे ये और चाहिए, दूसरों से हमें जो अपेक्षाएं हैं, या ऐसी पॉइंट्स जिसके कारण हम बहुत दुखी हो जाते हैं या थोड़ा बहुत स्थिति हमारी ऊपर नीचे होती है, तो ऐसी पॉइंट्स की खुद के लिए लिस्ट निकालनी है और पूरी लिस्ट निकाल लेनी है जो भी है, कुछ भी मन में नहीं रखते हुए। फिर एक दो दिन के बाद खुद ही बैठ करके उसको थोड़ा फिर से सॉर्ट आउट करना है कि क्या सचमुच ये कंप्लेंट्स हमारी है या इसमें से कोई बातें ऐसी ही है जिसको हम यूं ही हम लेकर चल रहे हैं, इसको हम छोड़ भी सकते हैं, जिसके कारण हमारी खुशी गायब हो रही है। तो फिर हमको ही अपने आप पे हंसी आएगी कि ये बातें हम क्यों लेकर चल रहे हैं। तो इसलिए उन बातों को हम जहां तक सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, उन सभी बातों को हमें अपने आप ही हल निकाल करके रोना बंद और मुस्कुराना या हंसना शुरू करना है। फिर उसके बाद है जो अभी बाकी है ये पॉइंट, इसमें कहा है कि सभी बहनों को कहना है कि एक वर्कशॉप अपने सेंटर पर ऑर्गेनाइज करना है जिसमें 100 ऐसी बातें निकालनी है, सबके जीवन की, मनुष्य जीवन की 100 ऐसी बातें निकालनी है जो हमको कठिन समस्या के रूप में लगती है। तो 100 पॉइंट्स निकाल सकते हैं क्या? समस्या, हम कहते हैं हमारे जीवन में बहुत समस्याएं, लेकिन अगर निकालने जाएंगे तो कितनी निकलेंगे? 2, 4, 5, 10 है ना, या और हमने बहुत अच्छे से किया तो शायद और भी निकल सकती है, लेकिन इतनी नहीं है जितना हम सोचते हैं। और बाबा ने जो मुरली में कहा है उसके आधार पर अगर हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या लिख सकते हैं, वो समस्या है अगर हमारे ब्राह्मण जीवन से संबंधित है या संस्कारों से संबंधित, जिसका हल हमको कहीं ना कहीं मुरली में मिला हुआ है, तो उसके आगे उसके समाधान भी लिखने हैं। क्योंकि हमारे पास भी हमेशा कोई मिला तो उसको सुनाने के लिए कोई बात होती ही है कि ये बात ऐसे हो रही है, ये ऐसे चल रहा है, तो उस समस्या का कुछ समाधान है, तो उसकी लिस्ट अगर हमारे सामने रहेगी तो समस्या और समाधान हम सभी को सुना सकते हैं या हम खुद ही पढ़ सकते हैं। एक बार लिस्ट पढ़ लेंगे तो फिर समस्या खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये कार्य सभी को देने वाले हैं, अभी दिया नहीं है। फिर अनहोनी को होनी कर दे। तो अभी तक हम जो सोच रहे थे कि ये कार्य मुझे करना है लेकिन किसी कारण से हम नहीं कर पा रहे थे, वो कार्य हमको करना है, असंभव को संभव करना है। जैसे किसी ने पूछा था कि सबसे कठिन क्या हो सकता है, तो जो कार्य मैं सोचती हूँ कि ये मैं कर ही नहीं सकती हूँ, समझो मैं सोचूंगी कि मैं 100 लोगों को भोजन बना के नहीं खिला सकती हूँ, तो वो करना ही है मुझे किसी भी हालत में वो काम करके अपने आप को ये दिखाना है कि ये मैं कर सकती हूँ। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अभी तक हमने की ही नहीं है या सोचते हैं कि ये कार्य मुझसे कभी हो ही नहीं सकता है, तो वो कार्य हमको जीवन में एक बार जरूर करना है, ऐसे इसका मीनिंग है। तो ये अनहोनी को होनी कर देना, ये सभी के लिए चैलेंज है। तो इसके गाइड है मुकुल भाई जी और ये हर 15 दिन में सभी की ऑनलाइन मीटिंग लेते हैं, अगर कुछ समस्या है तो उसको भी समाधान करते हैं। फिर चौथी पॉइंट है भविष्य की स्मृति वर्तमान में अनुभूति, इसके इंचार्ज है नीलिमा दीदी जी और जागृति बहन। इसमें भविष्य की जो स्मृतियां हैं, हमको फरिश्ता सो देवता बनना है, तो इसमें फरिश्ता रूप की सब बातें बताई जाएगी, जैसे कॉमेंट्रीज है या फरिश्ता ड्रेस में हमको कुछ एक्टिविटीज कराई जाएगी। फिर इसमें है कि हर देवता के लिए जैसे एक एक वार होता है, दिन होता है, तो उस दिन हमको और उनका जो विशेष भोग उनको हम लगाते हैं और उनके किस बात की विशेषता का यादगार है, तो ये सब बातें आगे के टॉपिक में बताई जाएगी। फिर लास्ट वाला है अब घर जाना है, जिसमें हमको सारे हिसाब किताब चुक्त कर फिर हमको जाना है, तो इसकी भी अभी ये तैयार होने का है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आपको जानकारी चाहिए तो ये दो कॉन्टैक्ट नंबर है, एक तनुजा बहन का है और राकेश भाई जी का है। शांति। तो इसमें जो सेकंड टॉपिक था संबंधों में मधुरता, वो हमने आपको नहीं बताया। ये बहुत अच्छी रीति से 2 महीने तक चलाया गया था, उसकी वीडियो प्रेजेंटेशन है, वो हम आपको बता रहे हैं।
प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
ये 9 सप्ताह के लिए कराया गया था अभ्यास, इसमें संबंधों में मधुरता की जो बातें बाबा ने अव्यक्त मुरली में सुनाई है, कौन से गुण हमें धारण करने हैं जिसके आधार पर हम संबंध मधुर रख सकते हैं, वो 9 गुणों को लिया गया था, जैसे मधुरता है, गुणग्राह्यता है और धैर्यता है, सहनशीलता, ऐसे गुणों को लिया गया था और बाबा से एक एक संबंध, क्योंकि संबंधों में मधुरता है तो बाबा तो कहते हैं सर्व संबंध मुझसे जोड़ो और सर्व संबंधों की रसना ले सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर थे तनुजा बहन और रामाराव भाई जी, और अंबरनाथ की टीम ने खास इसके लिए कार्य किया था। इसमें रोज होमवर्क दिया जाता था और इस प्रोजेक्ट को बहुत क्रिएटिव रीति से बनाया गया था, होमवर्क भी बहुत अच्छा रहता था। जैसे पहला गुण था मधुरता, तो पिता का संबंध था और इसमें है कि मीठे व्यंजन हमें बनाने हैं, सबके साथ संबंध मधुर होने के लिए हमको क्या क्या गुण चाहिए उसकी लिस्ट बनानी है, अगर खराब है तो उसका कारण क्या है, इससे बहुत अच्छा। ऐसे रोज दिया जाता था, होमवर्क भी दिया जाता था। ये YouTube पर भी है, तो हम इसमें बिंदु रूप के लिए और हर चीज के फोटोज सभी भाई बहनों ने जिन्होंने इसमें भाग लिया उनके लिए गए थे। फिर है ये होमवर्क कि आज दाल रोटी ही खाना है, तो तीनों टाइम दिन में सुबह दोपहर शाम सभी को दाल रोटी ही खाना है, त्याग का टॉपिक था, तो उसमें भी लोगों ने क्रिएटिविटी की है, किसी ने दाल ढोकड़ी भी बनाई थी, फिर दाल रोटी भी बनाई थी, दाल बाटी भी बनाई थी, ऐसे 3 टाइम अलग अलग भी बनाया था, लेकिन दाल रोटी ही खाना है तो ऐसे एक टॉपिक था। फिर फरिश्ता स्वरूप का था कि हमें एक हफ्ता पूरा फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करना है, अपने डीपी में भी ये फोटो रखना है, स्क्रीन में भी रखना है कि मैं फरिश्ता हूँ, और एक दिन हमें व्हाइट ड्रेस ही पहनना है, व्हाइट ड्रेस में और व्हाइट भोजन ही करना है, तो जैसे खीर बनाएंगे, साबूदाने की खिचड़ी, ऐसे था, तो वो सब करना है। एक त्याग वाला था जिसमें साधनों का त्याग करना था, तो मोबाइल है, टीवी है या मिक्सर भी है, कोई भी साधन यूज न करते हुए हमको कार्य करना था, तो ये भी था। फिर एक था कि एकता का, कि हमें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ गेम खेलना है, तो ये यहाँ चित्र भी दिखाए। इसमें एक बहन ने सुनाया है कि उसका और उसकी बहू की कुछ संबंधों में मधुरता का टॉपिक चल रहा है, तो एक बार उनकी बहू के साथ कुछ अनबन हो गई थी और वो बहू मैके चली गई और उन्होंने बहुत शुभ भावनाएं दी, बहुत सकाश दी और बहुत कुछ किया, लेकिन प्रोजेक्ट में जैसे बताया था कि कैसे हमें उनको सकाश देनी है, फिर वो बहू 1 दिन 2 दिन 3 दिन आई ही नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत शुभ भावनाएं दी, बहुत कुछ किया, फिर वो अपने आप ही आई, ऐसे बताया, लेकिन वो अब आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक बहन ने सुनाया है कि कैसे हमें साधनों का त्याग करने के लिए कहा है, तो दर्पण का भी त्याग करना है ऐसे। तो उनके भाई का, लौकिक भाई का जन्मदिन था और उसी दिन उनको था कि मोबाइल यूज नहीं करना है, तो उन्होंने उनको कुछ मैसेज नहीं किया, फोन नहीं किया। फिर दूसरे दिन जब उस भाई का फोन आता है तो उन्होंने कहा कि हमारा ऐसे प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उसको बहुत ज्यादा खुशी हुई और उसने कहा कि मैं भी ऐसे ही करने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे और भी बहुत है उसमें, मुझे दो ही बातें याद आ रही, वो मैंने आपको सुनाई। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत प्रोजेक्ट में क्रिएटिविटी थी और बहुत कुछ सीखने और आगे समझने और धारण करने जैसा था। अभी हम अगले प्रोजेक्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रोजेक्ट जिसका नाम है फॉलो फादर, जो प्रेजेंट करेंगे रुपेश भाई जी। रुपेश भाई जी 1992 से ईश्वरीय विश्वविद्यालय से परिचित हुए, इस ज्ञान से परिचित हुए। आपने जर्नलिज्म में अपनी डिग्री पढ़ाई कंप्लीट की। 94 से इस मुख्यालय में पूर्ण रूप से समर्पित होकर सेवाएं देने का संकल्प आपने साथ किया। 1997 से स्पार्क विंग से जुड़े हुए हैं और विशेष रुपेश भाई जी का इंटरेस्ट योग प्रैक्टिस या भिन्न भिन्न योग की कॉमेंट्रीज करना, कराना सभी को, और अलग अलग कॉमेंट्री करा के एकाग्रता बढ़ाना सबकी और बाबा से लिंक जुड़ाना, इसमें आप बहुत रुचि रखते हैं और करते रहते हैं ये कार्य। विशेष जो पीस ऑफ माइंड चैनल पर समाधान और एक मुलाकात, ये जो कार्यक्रम चलते हैं इसमें बहुत सुंदर तरीके से आप एंकरिंग भी करते हैं, इसलिए कभी कभी आप कहीं से गुजरते हैं तो लोग इनको देख के कहते हैं ये समाधान वाले हैं। बड़ा अच्छा शब्द लगता है ये, कि ये भाई जी क्या है, समाधान वाले हैं। तो अभी हम रुपेश भाई जी से सुनेंगे।
दिवस के अंतिम पड़ाव पे हम हैं, सारे दिन आप पर ज्ञान की वर्षा हो रही है, तो भरते जा रहे हैं ना, या लग रहा है बहुत भर गया जितना मिले सागर से अब करते चले। बहन जी समाधान की बात कर रहे थे, कई बार मैं और भाई साहब किसी प्रोग्राम में होते हैं तो यदि मैं यहाँ बैठा हूँ, भाई साहब यहाँ बैठे हैं, तो बहनें कभी हंसी में कहती हैं कि हमारे साथ दोनों हैं, समस्या और समाधान तो हमारा परिवार बड़ा ही मनोरंजक है। बहन जी जैसे बहुत ही मनोरंजक तरीके से प्रोजेक्ट की बात कह रहे थे, कितना अच्छा है, सफेद सफेद पहने, सफेद सफेद खाए, मतलब कितना आनंद है, आनंद युक्त है हमारा पुरुषार्थ। जैसे ही हम ज्ञान में आए पहले ही दिन हम सबको लक्ष्य मिला, सी फादर फॉलो फादर। अल्टीमेट हम सबका लक्ष्य, पुरुषार्थ की अलग अलग युक्तियां विधियां, वो सब एक ही लक्ष्य की ओर ले चलने के लिए, कि हम संपन्न संपूर्ण बाप समान बने। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए फॉलो फादर प्रोजेक्ट लिया गया। फॉलो फादर प्रोजेक्ट 2020 फरवरी से हम लोगों ने लिया पहला भाग, फरवरी 20 से जनवरी 21 तक, और गाइड इसे कर रहे हैं आदरणीय सूर्य भाई जी और विनय पंड्या भाई जो वल्लभ विद्यानगर से हैं, वो भी इस ग्रुप में साथ साथ हमारे फैसिलिटेट करते हैं ग्रुप को। विशेष प्रेरणा इस प्रोजेक्ट की इसलिए रही, जैसे प्रथम बात तो मैंने आपको कही, हम सबके जीवन का ध्येय ही यही है कि हम बाबा के जैसे बने, बाबा को ही सामने रखना, उन्हें ही देखना, उन्हें ही फॉलो करना हमारा ध्येय। लेकिन 2019 की अंतिम मुरली जो थी दिसंबर की, उसमें बाबा ने 3-4 बार इस बात को बहुत अंडरलाइन कराया कि तुम्हें बाप समान बनना ही है, बनना ही है, बनेंगे नहीं, बनना ही है, अंडरलाइन करो। तो ठीक उसके बाद हम सबके स्पार्क मीटिंग होने वाली थी, तो भाई साहब का भी ये संकल्प था और हम सब का भी यही कि क्यों ना बाबा ने जिस बात के लिए हमें प्रेरित किया है इस वर्ष के लिए कि इस साल में बनना ही है, तो क्यों ना उसे ही प्रोजेक्ट के लिए लिया जाए। और उसे पूर्व बाबा ने एक सुंदर सा मैसेज भी दिया था कि कितने वर्ष हो गए बाबा को ऊपर बैठे हुए, बाबा इंतजार कर रहे हैं कि कौन बच्चा सबसे पहले आएगा और मुझे ये खुशखबरी सुनाएगा कि हाँ बाबा मैं आपके समान बन गया। तो बाबा इंतजार कर रहे हैं वतन में बैठ करके। तो ये भी एक संदेश था जो बहुत प्रेरित कर रहा था कि अब हम धुन लगाएं और वैसे बन जाएं जैसे बाबा हमें बनाना चाहते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को लेने का विशेष ध्येय ये दो बातें बनी। तो हमने 2021 में पूरे वर्ष मार्च से शुरुआत करके जो अलग अलग थीम लिए थे, वो थीम यहाँ आप देख सकते हैं, मार्च अप्रैल मई जून अगस्त आदि तक। हर मास में 15 दिन के लिए एक चीज ली जाती थी, जैसे आत्मालाप है मार्च में आप देख रहे हैं, अगले 15 दिन में आत्मा के धुन, वैसे अप्रैल में साक्षी भाव और सकाश, और साथ ही तपस्या और मनसा सेवा। क्योंकि वो समय आपको ध्यान होगा 2020 का कि बहुत ही ज्यादा कोरोना का प्रभाव था, तो इसलिए इस प्रकार से विषय चुने गए थे कि हर 15-15 दिन में हम बाबा ने जिन चीजों पर हमारा विशेष ध्यान दिलवाया है उन चीजों पर हम मिल करके अच्छा गहन पुरुषार्थ करें। यूं तो ज्ञान सागर है और इतनी अथाह बातें हैं जिन पर एक साथ फोकस नहीं किया जा सकता, तो एक एक बात को 15-15 दिन के लिए लेकर के उसकी गहराई में उतरना, उसे अपने जीवन में उतारना, ये प्रोजेक्ट का ध्येय रहा था। आप देख सकते हैं सितंबर से जनवरी तक भी हमने अलग अलग विषय लिए जो बाबा लगातार अपनी मुरलियों में कहते हैं और जो ब्रह्मा बाबा के जीवन की विशेष विशेष धारणाएं रही थी, चाहे वो बेहद का वैराग्य रहा हो, स्वमान रहा हो, शुभ भावना शुभकामना रही हो, या फिर जनवरी मास में निराकारी निर्विकारी निरहंकारी की बात रही हो। तो ये सारी बातें हमने अपने फर्स्ट पार्ट में किया, फॉलो फादर वन में, 2021 में, और उसके पश्चात पुनः इस प्रोजेक्ट को लिया गया। और उसके पीछे रीजन ये रहा 21-22 के लिए फॉलो फादर टू के रूप में, क्योंकि पिछली सीजन की यदि आप मुरली देखेंगे तो बाबा ने प्रायः सभी मुरली में फॉलो फादर बाप समान बनना इन शब्दों को अंडरलाइन कराया है। जैसे पहली बात आप देखें, बहुत काल के बाप समान ही राज्य अधिकारी बनेंगे, प्रेरित करने वाली बात, बाप समान बनो। वैसे बाबा ने कहा कि जैसे बाप दादा, जैसे चारों ओर के सर्व बच्चे सर्व से प्यारे हैं बाबा को, ऐसे ही फॉलो फादर करो। समान बनना है तो समान करना भी है प्रेरणा। साथ ही बाबा ने कहा कि समान स्थिति में अपने आप को स्थित करो। एक मास के लिए बाबा ने होमवर्क दिया था, बाबा की मनसा वाचा कर्मणा कैसी होगी, हम भी एक मास के लिए इसे होमवर्क के रूप में लें। तो सेम बात बाबा ने पुनः मुरली में रिपीट की। आगे भी आप देख रहे हैं फॉलो फादर शब्द, बाप समान शब्द बाबा ने अलग अलग मुरलियों में यूज किया। ये कहा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ता रूप में वतन में बैठे हैं, ऐसे ही बाप समान आप बच्चे भी चलते फिरते फरिश्ते रूप अनुभव करो। साथ चलने के लिए समान बनना होगा। तो ये बाबा की पुनः पिछले सीजन की मुरलियों में सारी प्रेरणाएं रहें। इसके अलावा जो भोग संदेश भी थे अलग अलग, हमारी दादियां जैसे अव्यक्त हुई तो बाबा के जो भोग संदेश थे उनका भी सार यही रहा कि बाबा को दादियों को फॉलो करो, क्योंकि आज से मुक्त हो जाओ, क्योंकि अब परफेक्ट बनना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है। तो चाहे बाबा की मुरलियां थीं या भोग संदेश थे, सबका सार और भाव यही था। इसीलिए इसे पार्ट टू के रूप में भी लिया गया, फॉलो फादर टू के रूप में, कि हम अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करें। और पिछली बार जैसे अलग अलग विषय लिए गए थे, इस बार हमने एबीसीडी को थीम बनाया कि हम एबीसीडी ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए लेंगे, ताकि इजीली याद भी सभी को रहेगा। हर मास के लिए जैसे पिछली बार भी 15-15 दिन के लिए कुछ पुरुषार्थ रखे जाते थे, वैसे ही इस बार भी 15 दिन के लिए एक धारणा और एक अभ्यास। जैसे आप देख रहे हैं मार्च में ए और बी लिया गया है, अंतर्मुखता हमारी धारणा, आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास। बिंदु बनना, बिंदु लगाना हमारी धारणा, बीज रूप स्थिति में स्थित रहना ये हमारा अभ्यास। अप्रैल में आप देख रहे हैं सी से कंपेनियन और चीयरफुलनेस, बाबा के साथ रहेंगे और साथ ही हर्षित मुख, जैसे बहन जी भी बता रहे थे ना, रोना छोड़ देना है और हंसना शुरू करना है, तो हमारे चेहरे पे एक चीयरफुलनेस रहे, मुस्कान रहे बाबा के मिलने के बाद, वो भी एक सुंदर धारणा है। तो उस धारणा पर अंडरलाइन, डी से डबल लाइट रहना धारणा, और साथ ही हमारे भविष्य स्वरूप डेटिव फॉर्म उसका अभ्यास करना। मे में हमने ई से लिया एक नामी, एक बल, एक भरोसा। एक नामी हमारा अभ्यास, एक के साथ रहना और हमारी धारणा, एक बल एक भरोसा। एफ से फुल स्टॉप और फरिश्ता स्थिति को लिया गया। जून में ज्ञान स्वरूप गुणग्राही, हिम्मत और हीरो पाठधारी। जुलाई में वैसे इच्छा मात्रम अविद्या, इष्ट देव, और जे से हमने जिम्मेवारी और ज्वालामुखी स्थिति को लिया। अगस्त में कर्म योग से कर्मातीत अवस्था, के से एल से लवलीन स्थिति, लाइट माइट अवस्था, लगाव मुक्त स्थिति। सितंबर में एम और एन थे, मैं मेरा पन मुक्त, मनन को बढ़ाया गया, मन की एक्सरसाइज की गई, निमित निर्माण और निरंतर याद का अभ्यास। और अक्टूबर में अभी जो हम ले रहे हैं वो है ओबीडियंट और ओके, और साथ ही पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत से मुक्त, परोपकारी स्थिति और पांचों स्वरूपों का अभ्यास। तो ऐसे यदि हम इस क्रम में चलते हैं तो बहुत इजीली हमें याद भी रहता है कि हम क्या अभ्यास करते आए हैं, उसे रिवाइज भी हम करते रहते हैं, और साथ साथ जो अभ्यास वर्तमान में चल रहे हैं उसकी प्रैक्टिस। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ईमेल ज्यादातर अभी यही हम सबके साधन हैं, सारे ही ग्रुप के यही साधन हैं जिनके माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप के 35 लगभग ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम के भी हमारे दो ग्रुप हैं, और मेल ईमेल भी लगभग 1000 प्लस लोगों तक जाता है। तो काफी बड़ी संख्या है जो इस ग्रुप से जुड़ करके बहुत अच्छी तरह से फॉलो फादर की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमें बाबा को फॉलो करना ही है। जो रेगुलर पोस्टिंग है हमारी व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, वो मंथली चार्ट और साथ ही कर्म योग के चार्ट भेजे जाते हैं। लेटर भेजा जाता है आदरणीय सूर्य भाई जी की ओर से एवरी मंथ। स्वमान वो डेली के दिए जाते हैं। बाबा के महावाक्य, जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, उन्हीं टॉपिक्स से जुड़े हुए बाबा के महावाक्य भेजे जाते हैं ताकि उन्हें अपने जीवन में लाना और सहज हो जाए, और साथ ही हम प्रेरित होते हैं कि बाबा ने भी इसके लिए कितने गहरे गहरे महावाक्य कहे हुए हैं। तो एक ही जगह हमें एक विषय से जुड़े हुए सभी पॉइंट्स मिल जाते हैं, बाबा के महावाक्य मिलते हैं, तो वो भी हमें बहुत प्रेरित करता है। हमारी सीनियर्स की क्लासेस, साथ ही उसी से रिलेटेड कुछ बुक्स हैं तो वो भी पोस्ट किए जाते हैं ग्रुप में। मनन चिंतन का प्रश्न दिया जाता है, डेली ही मनन चिंतन का प्रश्न होता है जिस पर सभी गहराई से चिंतन करते हैं और ग्रुप में शेयर भी करते हैं। साथ ही सूर्य भाई जी की ओर से आज का पुरुषार्थ भी डेली ही भेजा जाता है। तो हमारी डेली की पोस्टिंग है और आप चार्ट का एक रूप देख सकते हैं। ये मंथली चार्ट रहता है हिंदी में भी और साथ ही इंग्लिश में भी। और जैसे 15-15 दिन की बात मैंने कही, 15 दिन के लिए हम एक विषय पर फोकस्ड होते हैं, अगले 15 दिन के लिए दूसरे विषय का चार्ट होता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चार्ट हमारे भेजे जाते हैं। लेटर का एक प्रारूप आप देख रहे हैं, जो लेटर प्रतिमास भेजा जाता है। एक क्वेश्चनर बनाया गया था, वो क्वेश्चनर भी सभी भाई बहनों ने, पहले की स्थिति हमारी कैसी थी, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग घटनाओं में, अलग अलग बातों में हम कैसे रिएक्ट करते थे, वैसा एक क्वेश्चनर फिलअप कराया गया था, जिसे बाद में भी फिलअप कराया जाएगा, जिससे हम देख पाते हैं कि कितना लाभ प्राप्त हो सका हमारे भाई बहनों को इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। एक्टिविटीज जो डिफरेंट की गई हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। रेगुलर मुरली क्विज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, गूगल फॉर्म के द्वारा ये किया जाता है और जो भी हमारे भाई बहने इसमें पार्टिसिपेट करते हैं बहुत रेगुलरली और बहुत लगन से तत्परता से सभी रोज ही मुरली क्वीज को करते हैं जिसे हम गूगल फॉर्म के थ्रू भेजते हैं, और इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए वर्ष के अंत में, वैसे तो रिजल्ट प्रति माह भी दिया जाता है कि कौन पास विद ऑनर रहे, किन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए, क्या परसेंटेज रही, ताकि व्यक्ति अपने प्रोग्रेस को देख पाता है, और ईयर एंड में उन्हें बहुत अच्छे पुरस्कार भी दिए जाते हैं एक मोटिवेशन के तौर पे ही। जो हम क्वीज करते हैं वो क्वीज जो हमारी मंथली टॉपिक है उन पे भी बेस्ड होता है, उसी से रिलेटेड अव्यक्त मुरलियां पोस्ट की जाती हैं ताकि उसकी गहराई से स्टडी कर सके। मान लीजिए हम आत्माभिमानी पे कर रहे हैं तो आत्माभिमानी की मुरलियां ही अव्यक्त मुरलियां पोस्ट की जाती हैं। मान लीजिए हम वैराग्य पे कर रहे हैं तो वैराग्य की मुरलियां पोस्ट की जाती हैं। आप जानते हैं सभी पर बाबा की बहुत सुंदर मुरलियां हैं जो बिखरी हुई हैं, रत्न बिखरे हुए हैं, तो एक एक चीज पर जब हम फोकस करते हैं तो वही मुरलियां, उन्हीं का अध्ययन, उन्हीं का चिंतन, उसी पे चार्ट, जब ये सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं तो गहराई में उतरना, अपने आप को चेक करना, अपने आप को चेंज करना बहुत आसान हो जाता है। साथ ही जो हमारी डिफरेंट बुक्स हैं, लिटरेचर हैं, चाहे वो भाग्य विधाता है, 3-in-1 है, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी है, मातेश्वरी जी की जो जीवन कहानी है, उन पे भी आधारित क्विज हम करते हैं ताकि सभी को बाबा और मम्मा और हमारे पूर्वजों के बारे में भी जानने को मिले और उनके भी त्याग तपस्या से सभी प्रेरित हों। साथ ही लास्ट सीजन में जो बाबा की अव्यक्त मुरलियां थी वो अव्यक्त मुरलियां भी हमने रिवाइज की ग्रुप में, ताकि बाबा ने जो होमवर्क दिया था वो होमवर्क सभी के ध्यान में रहे और जब बाबा से मिलने के लिए आए तो सभी उसी तैयारी से आए कि बाबा ने जो होमवर्क दिया था हम वो होमवर्क करके चलें। आप ये देख रहे हैं कुछ फोटोज हैं, जैसे मैंने कहा कि जो क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं बहुत एक्टिवली चार्ट फिलअप करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक मोटिवेशन के तौर पे थोड़े से प्राइज या सर्टिफिकेट छोटा सा बाबा के घर की तरफ से कुछ ऐसा होता है, तो सभी को बहुत खुशी होती है कि मधुबन बेहद घर से हमें स्पार्क की ओर से, आदरणीय सूर्य भाई जी की ओर से ये चीजें प्राप्त होती हैं। तो छोटा सा ही, भले एक छोटी सी डायरी हो, छोटा सा पेन हो, लेकिन सारे वर्ष जो परिश्रम करते हैं और इस लगन से करते हैं तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए अंत में, वर्ष अंत में ये चीज रखी जाती है। हमने इस बार लाइफ हिस्ट्री हमारे पूर्वजों की रखी थी अलग अलग मंथ के लिए। मार्च आप जानते हैं दादी जानकी जी का है, तो दादी जानकी जी के छोटे छोटे सुंदर प्रसंग जो उनके त्याग तपस्या से जुड़े हुए रहे वो शेयर किया गया। अप्रैल मंथ में दादी गुलजार जी के छोटे छोटे सुंदर वीडियोस सभी ग्रुप में भेजे गए ताकि दादी की जो शिक्षाएं रही हैं उन शिक्षाओं से सभी अवगत हो सकें। मई में मनसा सेवा और स्पार्क की ओर से भी आपने देखा होगा रात को जो भी चला या फिर संडे की भट्टी चली उसमें भी सभी ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। जून मंथ में विशेष करके हमने एक वीक के लिए जूम और यूट्यूब पे अमृत वेला विशेष करके रखा और मम्मा के दिवस पर 2 से 5 तक योग रखा था, तो वो सभी को बहुत ही प्रिय लगा और मम्मा की विशेष ये धारणा भी थी कि सुबह सुबह उठ करके गहन तपस्या किया करते थे। तो जून मास से लेकर के अब तक एवरी सैटरडे संडे हम 2 से 5 बजे तक विशेष योग रखते हैं जिसमें सभी बहुत उमंग उत्साह से पार्टिसिपेट करते हैं और हमारी जो सीनियर्स हैं वो 4 से 4:45 इसमें विशेष आकर के सभी को कमेंट्री से योग भी कराते हैं। तो ये एक सुंदर एक्टिविटी रही है जो सबको बहुत ही पसंद आई है और सबकी तपस्या में इजाफा हुआ है। दीदी मनमोहनी जी के ऊपर भी जुलाई में बहुत अच्छे उनकी जो शिक्षाएं रही हैं वो भेजी गई, क्विज भी किया गया और खास एक इवेंट अगस्त में किया गया स्पार्क की ओर से ही और पूरे ब्राह्मण परिवार के लिए, देश विदेश के जो हमारे भाई बहने हैं, कि दादी के जीवन के ऊपर एक क्विज रखी गई थी, क्विज कॉम्पिटिशन, जिसमें सभी ने बहुत सुंदर पार्टिसिपेट किया। लगभग 5,700 भाई बहनों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और जिन्होंने विन किया उनके लिए खास 80% से जिनके ज्यादा मार्क्स थे उनके लिए खास प्राइज और बाकी जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया उनके लिए ई सर्टिफिकेट की व्यवस्था की गई थी। तो ये भी बहुत ही सक्सेसफुल रहा। ये लक्ष्य था कि हमारी जो दादियां हैं उनके जीवन की जो बहुत ही गहरी गहरी सुंदर बातें और धारणाएं रही हैं, उनके जीवन की एक सुंदर झलक रही है, इसी बहाने सभी उसका अध्ययन करें, पढ़ें। तो जब हम कुछ कंपटीशन रखते हैं तो सभी बहुत एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें भी सभी ने बहुत उमंग उत्साह से पार्ट प्ले किया। कई लोग इसमें आए भी हुए होंगे जिन्हें प्राइज मिलेगा स्पैक की ओर से। कई एक्टिविटीज होती रहती हैं, जिनमें से एक एक्टिविटी आप देख रहे हैं टीचर्स डे पे परम शिक्षक पर कोई कविता लिखें या कोई चित्र बनाएं इस प्रकार की, या उनकी शिक्षा जो आपको पसंद हो, ऐसी एक एक्टिविटी दी गई थी। कईयों ने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखी, जिनमें से कुछ कविता आप देख रहे हैं, और कईयों ने अपने जैसे कहा था कि पिक्चर भी बनाएं, तो कईयों ने पिक्चर भेजा है। आप उनके उमंग उत्साह को देखें, भले ही बाबा का चित्र उन्होंने ठीक से ना बनाया हो जैसे बच्चों ने ड्रॉ किया हो, लेकिन फिर भी एक उमंग उत्साह कि नहीं, हम भी बाबा का चित्र बना करके भेजेंगे जो हमारे परम शिक्षक हैं। तो ऐसे अलग अलग आप देख सकते हैं कि एक्टिविटीज रहती हैं, तो वो भी सभी बहुत उमंग उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जूम और यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि यही हमारे साधन रहे हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ने के, तो इसमें स्पेशली क्वेश्चन आंसर सेशन, जो अलग अलग टॉपिक्स हम लेते हैं आदरणीय सूर्य भाई जी के साथ, ताकि उस विषय की गहराई हम समझ सकें। और इसमें हम सभी पार्टिसिपेंट्स जो भी हैं फॉलो फादर ग्रुप के, उन सभी के क्वेश्चंस भी आमंत्रित करते हैं कि आप अपने प्रश्न भेजें, और उन्हीं प्रश्नों के आधार पे उन्हें क्लेरिटी मिलती है कि हाँ, इस विषय को कैसे हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उतार सकते हैं, जीवन में ला सकते हैं, ऐसा बन सकते हैं। हफ्ते में दो बार विशेष शाम को योग और हमारे बड़ों की क्लास का कार्यक्रम रहता है, कभी संभव हो पाता है कभी नहीं, लेकिन ये भी हमारे प्रोग्राम में रहता है। सभी के अनुभव किस प्रकार के आ रहे हैं वो अपने अनुभव भी शेयर करते हैं इन माध्यमों से, ताकि हम आगे उसमें और कुछ करेक्शन एडिशन कर सकें। लेकिन अब तक सभी के उमंग उत्साह भरे ही बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक आते हैं, और हर एक यही शेयर करता है कि हम आगे से आगे बढ़ते चल रहे हैं। सितंबर मास में खास करके विघ्न विनाशक योग भट्टी रखी गई थी 21 दिन 21 मिनट इस नाम से, कि हम 21 दिन विशेष अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, ब्राह्मण परिवार के लिए भी, और सारे विश्व के लिए भी विघ्न विनाशक योग करें। तो 21 मिनट सभी ने बहुत अच्छे से स्पेयर किया, काफी भाई बहनें उससे जुड़ करके लाभ भी उन्होंने लिया और सारे विश्व में भी सकाश फैलाया। और अभी भी नवरात्रि आ रही है, तो 9 दिन तक विशेष आधे घंटे के लिए हमारी शक्तियों के ऊपर ये रखा गया है 9:30 से 10 बजे तक। तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज जो कुछ ना कुछ सुंदर हमारी अनुभूति के लिए हों, या हमें आगे बढ़ाने वाले हों, और अलग अलग प्रकार से हमें योग युक्त करने वाले हों, इस लक्ष्य से बनाए जाते हैं। एक्सपीरियंसेस आप देख रहे हैं शेयर करने के हिसाब से, सभी ने अपने सुंदर अनुभव भेजे हुए हैं। आप चाहे वो देश के भाई बहने हैं या विदेश के भाई बहने हैं, सभी का यही कि जैसे जुड़े हैं, किसी को कुछ फायदा, किसी को कुछ फायदा, किसी को कुछ फायदा, तो अलग अलग सभी ने अपने अपने सुंदर एक्सपीरियंसेस जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वक्त के अभाव के कारण मैं वो नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये सारे सुंदर से सुंदर अनुभव सभी ने शेयर किए हैं। यदि जिज्ञासा बहन हो तो मैं चाहूंगा एक मिनट में सारे ग्रुप की ओर से अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करेंगे। और साथ ही जब तक जिज्ञासा बहन मंच पर आए, हमारे लोकल चैप्टर्स हैं, आप देख रहे हैं अलग अलग लोकल चैप्टर पूरे भारत भर के, और साथ ही साथ विदेशों के भी भाई बहने से जुड़े हुए हैं। जो भी फॉलो फादर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए भाई बहने यहां बैठे हुए हैं, जरा एक बार उठेंगे। फॉलो फादर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए भाई बहने, बहुत सुंदर आप सबका। इन सब के लिए मैं चाहूंगा एक हाथ की ताली जरूर सभी बजाएं, जो बहुत अच्छी तरह से पूरे भारत भर से आप जुड़ करके बहुत अच्छे से इसे आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जिज्ञासा बहन सबकी तरफ से एक मिनट में अपना अनुभव शेयर करेंगे।
ओम शांति। रूपेश भाई ने सारी एक्टिविटीज तो बता दी कि कैसे होता है प्रोजेक्ट में, तो उसी से रिलेटेड जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो जो रात को 9 बजे हम लोगों को स्वामान दिया जाता है, तो स्वामान रात को ही पढ़ के सोते हैं, तो सुबह से ही वही फीलिंग के साथ उठना रहता है, तो पूरे दिन में अच्छा सा एक बना रहता है कि वही स्थिति में हम चलते हैं। दूसरी बात ये होती है कि सुबह में अमृत वेले के बाद तुरंत मनन चिंतन का पॉइंट दिया जाता है, तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है कि इसके बारे में हम क्या लिखे, क्या करें, कैसे करें। तो पूरे दिन, मतलब पहले तो ऐसा था कि मुरली सुन ली, रिवाइज भी करते रहते पॉइंट, लेकिन उतना डेप्थ में जाना, जो उसका बोलते हैं कि कैसे उसको अप्लाई करना चाहिए, हम हीरो एक्टर जैसे टॉपिक लिया था, तो हीरो एक्टर में क्या होता है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होती है, तो ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर टॉपिक्स पे जब सोचना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि हम कहाँ पर है और बाबा हमें कहाँ पर देखना चाहते हैं। पता तो सब कुछ होता है, लेकिन वो क्या होता है कि मर्ज और इमर्ज की बात होती है, तो वो सब मनन चिंतन से ही हमारा इमर्ज हो रहा है कि कैसे कैसे हमको कहाँ कहाँ क्या क्या हमारे में डिफिकल्टीज है और हमें वो कैसे पूरी करनी है। क्योंकि टॉपिक दिया जाता है तो हम सब पॉजिटिव ही सोचते हैं कि हीरो एक्टर है तो क्या करना है, मैपन से मुक्त होना है तो क्या करना है, निमित बनकर चलना है तो क्या करना है, लेकिन करते नहीं होते। पर जब ये टॉपिक्स चलते हैं, उसका मनन चलता रहता है, तो पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है। वैसे ही क्विज की बात करें तो क्विज की वजह से ही हम मुरली का अध्ययन बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। पता चलता है कि कहाँ पे थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो मार्क्स चले जाते हैं, तो वो डर की वजह से पूरी मुरली को 2-3 बार रिवाइज करना, उसको अच्छी तरह से समझना। और ये भी रहता है कि जैसे मम्मा की किताब हम लोगों ने क्विज में की, तो पहले भी बहुत बार मम्मा की किताब पढ़ी हुई है, सबसे अनुभव सुने हुए, लेकिन जब क्विज की बारी आती है और मार्क्स कटने का डर रहता है ना, तो उसमें एकदम फोकस होके जब पढ़ना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम मम्मा की किताब नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं पर है। और जैसे मम्मा की स्टोरी हमको मोहिनी बहन सुना रहे हैं या सुदेश दीदी सुना रहे हैं, वो सारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहता था। लास्ट में तो मुझे रमेश भाई का जो पार्ट था वो सुनते हुए तो जैसे कि आंख में आंसू उसी वक्त आ रहे थे कि मम्मा की स्थिति के बारे में उन्होंने जो वर्णन किया था। तो मतलब ये जो पूरी एक्टिविटीज जो होती है पूरे दिन की रहती है और कंटिन्यू रहता है, ऐसा नहीं लगता है कि हम कुछ फॉर्मेलिटीज के लिए कुछ कर रहे हैं, पुरुषार्थ के लिए बहुत अच्छा रह रहा है। और तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहूं कि मेरी जॉब जनवरी में छुट्टी और मैं करीबन 18 साल से जॉब कर रही हूं, तो घर पे रहना मतलब कितना मुश्किल का काम होता है आप लोग समझ सकते हो। तो जनवरी से मेरा हुआ ब्रेक और फरवरी से ही ये प्रोजेक्ट वापस से एक्टिव हुआ, तो तब से मतलब एक्टिविटीज में इतना इन्वॉल्व है कि ऐसा थॉट भी नहीं आता है कि विदाउट जॉब घर पे हैं और कुछ नहीं करने को मिल रहा है। तो स्थिति वैसी की वैसी नहीं, पर कहूंगी कि पहले से बेहतर हो रही है। और जो बहुत कुछ डिफिकल्टीज होती है, भले बहुत सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ डिफिकल्टीज होती है जो हम लोगों ने कभी ध्यान पे नहीं ली होती है, तो ये मनन चिंतन क्वीज उसके माध्यम से हमको पता चलता है कि हमें अभी क्या करना चाहिए। और ज्यादा ना टाइम लेते हुए थैंक यू सो मच, ओम शांति।
थैंक यू जिज्ञासा बहन। बाबा का एक महावाक्य जो हम सबको विशेष विशेष इस प्रोजेक्ट के लिए और भी ज्यादा प्रेरित करता है, जो बाबा ने कहा कि बाप समान बनने के लिए दृढ़ता को साथी बनाना, बाप को सदा सामने रखना, ब्रह्मा बाप को नैनों में समाये रखना, और ब्रह्मा बाप ने क्या किया, मनसा वाचा कर्मणा वही करना। तो ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, जो मैंने प्रारंभ में कहा आपको, बनना है नहीं लेकिन बनना ही है, बाबा और दादियों को फॉलो करना है, ये बाबा के महावाक्य। इसीलिए हम लोगों ने एक सूत्र वाक्य ही रखा है अपने इस पूरे ही प्रोजेक्ट के लिए कि बाबा होते तो भले ही चार्ट कुछ भी हो, लेकिन लगातार सुबह से लेकर रात तक सभी के अंदर एक वाक्य ही, यही सूत्र वाक्य बार बार रिपीट करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि बाबा होते तो उनकी मनसा कैसी होती, उनकी वाचा कैसी होती, उनके कर्म कैसे होते, वो किस परिस्थिति को कैसे हैंडल करते, कैसे चलते, कैसे बैठते। तो इस प्रकार बाबा हमेशा सामने रहते हैं और बाबा को सामने देखते हुए सबके जीवन में एक सुंदर परिवर्तन आता चल रहा है। तो एक विशेष दादियों के जाने के बाद कईयों के मुख से ऐसा सुनने में आता है जब मधुबन आते हैं तो जो पुराने हैं, या कि अब मधुबन आते हैं तो थोड़ी सी एक रिक्तता अनुभव होती है कि दादियां नहीं हैं, तो इस रिक्त स्थान को कौन पूर्ण करेगा, कौन पूर्ण करेगा। जब दादियां गईं, खास करके गुलजार दादी गए, तो तो उसके बाद मन में यही भाव आया कि जब घर का कोई बड़ा चला जाता है तो छोटे जिम्मेवार हो जाते हैं। छोटा भले कितना भी छोटा हो, लेकिन फिर छोटा बड़ा हो जाता है और बड़ा बन करके उसी संस्कृति को, उन्हीं सब बातों को, संस्कारों को, उनके वो संवाहक बन जाते हैं। तो अब बाप समान हम ही बनकर, जो दादियों ने दिखाया बाप समान बनके, वही कार्य हम सबको भी करना है। तो ये प्रोजेक्ट विशेष करके इसी लक्ष्य को लेकर चल रहा है कि हम सभी अब बाप समान बन जाएं और बाप समान बनके उस रिक्त स्थान को जरूर पूर्ण करें जिस रिक्तता का लोग अनुभव करते हैं, क्योंकि हमें ही तो बाबा को सारे संसार में प्रत्यक्ष करना है। तो आए हम सब मिलकर, भले ही किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने आप को बाबा समान बनाकर बाबा को सारे संसार में प्रत्यक्ष करें। ओम शांति।